इससे पहले पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के संबंध में आपने विस्तार से समझा कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके भेद क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, इन सारी बातों को आपने समझा। आज के पाठ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है। इसमें यह है, आपने सुना होगा ना कि सृष्टि होती है, भगवान सृष्टि करते हैं, फिर जो है सृष्टि का संहार होता है। तो आज आपको न्याय दर्शन के अनुसार ये बताया जाएगा कि सृष्टि कैसे होती है, उसका क्रम क्या है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और फिर संहार भी जो है सृष्टि का किस तरह से होता है। ये सब दार्शनिक प्रश्न है। सोसाइटी में भी जो है ना, लोग जब समझेंगे कि ये संस्कृत पढ़ते हैं तो आपसे पूछना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, तो इन सब बातों को हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रंथ में कहा गया कि तत्र पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाशक क्रमः कथ्यते। क्या कि यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, केशव मिश्र जी कहते हैं कि पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम कार्य द्रव्याणाम, ये जो पृथ्वी आदि चार द्रव्य थे, यहाँ पर चार द्रव्य कौन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों के चारों जो हैं ये दो तरह से द्रव्य होते हैं। एक तो नित्य द्रव्य होते हैं, नित्य पृथ्वी, नित्य जल, नित्य तेज, नित्य वायु, और दूसरा एक होता है कार्य द्रव्य, माने अनित्य पृथ्वी, अनित्य जल, अनित्य तेज, अनित्य वायु। तो इसमें जो आचार जो नित्य है उसका, उसमें तो उत्पत्ति विनाश होगा नहीं है, होगा नहीं, क्योंकि इसीलिए तो उसको नित्य कहते हैं। जिसका उत्पत्ति भी हो और विनाश भी हो वह तो कार्य कहलाएगा, वह अनित्य कहलाएगा। तो इसीलिए सृष्टि और संहार की जब बात होगी तो किस में बात होगी, नित्य द्रव्य में बात नहीं होगी, कार्य द्रव्य में ही बात होगी। जैसे घटपट आदि जो है ये क्या है, ये कार्य द्रव्य है, तो इन्हीं की सृष्टि की बात होगी और इन्हीं के विनाश की माने संहार की बात होगी। तो वही कह रहे हैं कि तत्र पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम कार्य द्रव्याणाम, चार प्रकार के जो पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं उनका उत्पत्ति क्रम कहा जाता है यहाँ पर, और विनाश क्रम कहा जाता है। उत्पत्ति क्रम को ही सृष्टि कहते हैं और विनाश क्रम को ही जो है हम संहार कहते हैं। अब देखिए कैसे, सबसे पहले सृष्टि होगी उसके बाद संहार होगा ना, इसलिए पहले सृष्टि का क्रम बता रहे हैं। द्वयो हो परमाणु हो, अब दो परमाणु जो है, ये परमाणु क्या है, फिर मैंने पहले भी कभी कहा था कि आगे विस्तार से बताएंगे, तो यहाँ पर भी मैं यही कह करके निकलूँगा अभी कि आगे बताया जाएगा परमाणु के बारे में। अभी आप जो भी आपके मन में है कि परमाणु क्या होती है, जैसे कि वहाँ पर भी मैंने पहले कहा था कि सबसे छोटा जो कण है, जिसका कि टुकड़ा नहीं हो सकता, वही कण जो है परमाणु होता है। तो द्वयोः परमाणुः हो, दो परमाणुओं में क्रिया होती है, माने फंक्शन शुरू होता है। तो अब दोनों दो परमाणुओं में क्रिया जो होती है, तो मन में आएगा ना कि क्रिया जो है वह तो तब तक नहीं होगी जब उस क्रिया को कोई कराने वाला न हो। तो यहाँ जो दो परमाणुओं में क्रिया होती है बताया गया सृष्टि के संबंध में, तो उस क्रिया को करने कराने वाला कौन है, तो इस जिज्ञासा को यद्यपि यहाँ ग्रंथकार ने नहीं दिया है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ कि दो चीजें जो होती हैं ना, वो उन दोनों चीजों के कारण जो है यहाँ पर दो परमाणुओं में क्रिया होती है, क्रिया उत्पन्न होती है। वो दो चीजें क्या है, एक तो है ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर के प्रयत्न से दो परमाणुओं के बीच में जो है ना क्रिया उत्पन्न होती है, और दूसरा तत्व क्या है, वह है जीव का अदृष्ट। जीव हो गए हम आप सब, तो हमारा आपका जो अदृष्ट है, अदृष्ट से मतलब है पुण्य और पाप, तो हमारा आपका जो अदृष्ट है और ईश्वर का जो प्रयत्न है, इन दोनों के कारण जो है द्वयोः परमाणुओं हो क्रिया भवति, दो परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, और उस क्रिया से क्या होता है कि संयोगे सति, उन दोनों परमाणुओं में जो पृथक पृथक परमाणु है उन दोनों परमाणुओं में क्या होता है, संयोग होता है, दोनों जो है संश्लिष्ट हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, और जब संयोगे सति जब संयोग हो जाता है तो फिर द्वनुकम उत्पद्यते, फिर वहाँ पर एक द्वनुक की उत्पत्ति होती है। पहले क्या था, दो परमाणु था, उस दो परमाणु में क्रिया उत्पन्न हुई किसके कारण से, ईश्वर के प्रयत्न से और जीव के अदृष्ट से क्रिया उत्पन्न हुई। उस क्रिया के कारण जो है उन दोनों परमाणुओं में संयोग हुआ, माने दोनों ज्वाइंट हो गया। दोनों ज्वाइंट जब हुआ तो उससे एक जनुक उत्पन्न हुआ। जनुक मतलब दो परमाणुओं का समूह जहाँ जिसमें हो उसको हम जनुक कहते हैं। तो दो परमाणुओं के में क्रिया होने से उसके बाद संयोग होने से जनुक की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब वह जो जनुक है तस्य वो माने तस्य जनुकस्य उस जनुक का परमाणु समवायी कारणम, उस जनुक का वो जो जनुक बना है वो दो परमाणुओं से बना है, तो वो जो दो परमाणु हैं वो उनके समवायी कारण हुए। जनुक की उत्पत्ति हुई ना, तो जनुक की उत्पत्ति में समवायी कारण, तीन तरह के कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो जनुक की उत्पत्ति में समवायी कारण माना जाएगा किसको, तो परमाणु को। यहाँ परमाणु में द्विवचन है, माने दो परमाणुओं को समवायी कारण माना गया। और उन दो परमाणुओं में जो संयोग होता है, संयोग नाम का गुण उत्पन्न होता है, वह जो दो परमाणु का परमाणु द्वय संयोग है वह हो गया असमवायी कारण। आप जानते ही हैं कि ये संयोग जो होता है उसको असमवायी कारण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कपालद्वय संयोग होने से जो है घट बनता है, तंतुद्वय संयोग होने से जो है ना पट बनता है, तो तंतुद्वय संयोग या तंतुद्वय में रहने वाला रूप, ये सब जो है ये सब क्या होता है, असमवायी कारण होता है। तो ये जो जनुक उत्पन्न हुआ उसमें जो दो परमाणु हैं वो दोनों परमाणु हो गए समवायी कारण, दोनों परमाणुओं में जो संयोग हुआ वह हो गया असमवायी कारण, और निमित्त कारण क्या हुआ, तो कहते हैं अदृष्ट आदि निमित्त कारणम। ये अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। अदृष्ट आदि में एक अदृष्ट तो मैंने बताया था कि जीवात्मा का जो पुण्य पाप है उसी को अदृष्ट कहते हैं, तो वह अदृष्ट निमित्त कारण के अंतर्गत आता है। और आदि से ईश्वर के प्रयत्न को ले लीजिए, वह भी जो है निमित्त कारण है। ऐसे न्याय दर्शन में जो है ना आठ प्रकार के निमित्त कारण माने गए हैं, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे तो वो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए अदृष्टादि से आप ये समझ लीजिए कि अदृष्ट आदि जो आठ प्रकार के हैं वे यहाँ पर निमित्त कारण हैं। उसमें जो है एक अदृष्ट हो गया, एक ईश्वर का प्रयत्न हो गया, फिर जो है जनुक का प्रागभाव होता है, फिर ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर का निर्माण करने के लिए प्रयत्न होता है, फिर उसके निर्माण के अनुकूल काल होता है, फिर दिशा होती है। इस तरह से ये आठ कारण हैं। फिर मैंने बताया कि इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सामान्य मैंने आपको बता दिया कि ये अदृष्ट आदि जो है उस जनुक की उत्पत्ति में निमित्त कारण है। तो चलिए, एक सृष्टि हो गई क्या, कि दो परमाणुओं से जो है जनुक की उत्पत्ति हुई। जब जनुक की उत्पत्ति हो जाती है फिर क्या करेंगे, तो ततो जनुकानाम त्रयाणाम, अब तीन जनुक को इकट्ठा करेंगे। अब तीन जनुकों में जो है ना क्रिया उत्पन्न लेगी, कैसे, जैसे दो परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हुई थी अदृष्टादि से निमित्त कारण से, उसी तरह से तीन द्वनुकों के बीच में जो है, तीन द्वनुकों के समूह में जो है क्रिया उत्पन्न होगी, उसका फिर संयोग होगा तीनों द्वनुकों का। और फिर जब संयोग होगा तो जैसे दो परमाणुओं में क्रिया हुई संयोग हुआ तो जनुक की उत्पत्ति हुई, उसी तरह से यहाँ पर तीन द्वनुकों में क्रिया हुई और संयोग हुआ तो उससे त्रनुक की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, पहले जनुक की सृष्टि हुई, जनुक के बाद यहाँ पर त्रनुक की सृष्टि हो गई है। अब यहाँ पर जो त्रनुक है इसमें भी बता रहे हैं कि कौन समवायी कारण है, कौन असमवायी कारण है, कौन निमित्त कारण है। तो कहते हैं कि तस्य जनुकानि समवाय कारणम, ताकि ये जो त्रनुक की उत्पत्ति हुई है इस त्रनुक में वो जो तीन द्वनुक हैं वो समवायी कारण कहलाएंगे। और शेषम पूर्ववत, शेषम पूर्वत माने जैसे उनका संयोग है, तीनों द्वनुकों का जो संयोग है वह असमवायी कारण होगा, और अदृष्टादि जो है वहाँ पर निमित्त कारण होगा। तो इस तरह से अब दूसरी सृष्टि हो गई, त्रनुक की उत्पत्ति हो गई। जब त्रनुक की उत्पत्ति हुई तो इसी क्रम से अब आगे उत्पत्ति होती रहेगी, एवं त्रनुक चतुर्भिः चतुरनुकम्। इसी तरह से अब क्या करेंगे, चार त्रिणुक को जो है ना इकट्ठा करेंगे, तो चार त्रिणुकों को मिला करके फिर उसमें क्रिया होगी, फिर उसमें संयोग होगा, और संयोग होने के बाद एक तीसरे की उत्पत्ति होगी, इसकी चतुर्णुक की उत्पत्ति होगी। पहले द्विणुक की उत्पत्ति, फिर त्रिणुक की उत्पत्ति, और फिर चतुर्णुक की उत्पत्ति। एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि जब त्रिणुक उत्पन्न होता है ना, तो तभी वह प्रत्यक्ष ग्राह्य होने लगता है, त्रिणुक के से ही वो उसका अनुभव होने लगता है। उससे पहले जो द्विणुक है या परमाणु है वह प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष होने के लिए महत परिमाण होना जरूरी है, और महत परिमाण उनमें नहीं होते हैं। खैर, तो आगे चलते हैं। एवं त्रिणुक चतुर्भिः चतुरनुकम, माने चार त्रिणुकों को मिला करके एक चतुर्णुक की जो है उत्पत्ति होती है। चतुरनुकैः अपरम स्थूलतरम, और इसी तरह से चतुरनुक को बहुत सारे चतुर्णुक को मिला करके बहुत सारे क्या, जैसे क्या हुआ, पहले दो परमाणु था ना, दो परमाणुओं को मिला करके द्विणुक हुआ, और उसके बाद तीन द्विणुक को मिला करके त्रिणुक हुआ, फिर चार त्रिणुक को मिला करके चतुर्णुक हुआ, ऐसे ही पंचानुक होगा, पंचानुक में क्या होगा, पांच चतुर्णुक को मिला करके पंचानुक बनेगा। इसी तरह से जो है ये सृष्टि बनती चली जाती है। तो वही कहा कि चतुरनुक ये पांच चतुर्णुक को मिला करके अपरम स्थूलतरम, स्थूलतर माने उससे बड़ा जो है उसकी उत्पत्ति होती है, फिर स्थूलतरे अपरम स्थूलतमम, फिर उस उन स्थूलतरों को मिला करके अपर माने दूसरा जो है स्थूलतम की उत्पत्ति होती है, और इसी तरह से उत्पत्ति होते होते ये जो है एवं क्रमेण महापृथ्वी, इस क्रम से जी जो है धीरे धीरे बढ़ता रूप चला जाता है, तो महापृथ्वी बन जाती है, महत्यः आपः महान जल बन जाता है, महत् तेजः महान जो है तेज मतलब आग बन जाती है, अमहांश वायु और महान वायु जो है वह उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना कैसे महापृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे महान आप की महती आप की उत्पत्ति हुई, कैसे महान तेज की उत्पत्ति हुई, कैसे महान वायु की उत्पत्ति हुई, तो पहले परमाणु होता है, फिर परमाणु द्वय संयोग होने से द्विणुक की उत्पत्ति होती है, फिर द्विणुक से त्रिणुक उत्पन्न लेता है, त्रिणुक से चतुर्णुक उत्पन्न लेता है, चतुर्णुक से पंचानुक उत्पन्न लेता है, फिर पंचानुक से स्थूलतर बनता चला जाता है, स्थूलतर से स्थूलतम बनना शुरू हो जाता है, और ऐसे आते धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके बड़ा रूप बन जाता है पृथ्वी का, जल का, तेज का और वायु का। अब ये जो है, अब इसमें जो है ना, ये तो बना है, सृष्टि हुई, लेकिन अब इसमें जो है ना रूप रस गंध स्पर्श ये सब भी जो है ना होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो उसको बताया कि कार्यगता रूपादयः, ये जो महान पृथ्वी महान आप सब जो कार्य है, इसमें जो रूप आदि होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, तो स्वाश्रय समवायि कारण गतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते। कहा कि ये जो कार्य में रहने वाला जो रूप है, माने घटपट आदि जो कार्य है, उसमें रहने वाला जो रूप रस आदि है, वह रूप रस आदि कहाँ से आता है, तो कारण में रहने वाला जो रूप रस आदि है, उस वही रूप रस आदि जो है इस कार्य में भी आ जाता है। वही कहा कि कार्यगता रूपादयः, कार्य में गत मतलब कार्य में रहने वाला जो रूप आदि है, वह स्व आश्रय समवायि कारण गतेभ्यः, स्व माने कार्य का जो आश्रय है कौन, समवायि कारण, उस समवायि कारण में रहने वाला जो रूप आदि है, वही रूप आदि इस कारण में भी कार्य में भी उत्पन्न हो जाता है। ताकि इसके लिए कुछ नियम भी है क्या, का क्या नियम है क्या, तो कारण गुना ही कार्य गुणान आरभन्ते इति न्यायात्, एक न्याय है, नियम है कि कारण गुण, कारण में रहने वाला जो गुण है वही कार्य में रहने वाले गुण का आरंभक होता है, कार्य में रहने वाले गुण का आरंभ करता है, उसको बनाता है। तो ये जो रूप रसादि जो है ये गुण ही है, इन गुणों को जो है कार्य में रहने वाला, घटपट आदि में रहने वाला जो रूप रस आदि है, वह रूप रस आदि कहाँ से आता है? तो समवायी कारण जो है उसका परमाणु, उस परमाणु में रहने वाला जो रूप रस आदि है, उसी से जो है कार्य में रूप रस आदि उत्पन्न होता है। इस तरह से जो है सृष्टि के बारे में बताया, और थोड़ा बता रहे हैं कि इत्थम उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेह अवयवेषु कपालादिषु नोदनात् अभिघातादवा क्रिया जायते। अब जो है ना यहाँ पर वो संहार की प्रक्रिया यहाँ पर बताएंगे, सृष्टि की प्रक्रिया जो है इससे पहले बताई गई है, तो आज हम संहार की बात नहीं करेंगे, आज सृष्टि पर ही जो है अपने पाठ को विराम देंगे।